लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरित पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरित पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर और नारी के रूप में भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओ, हमने अपने पिछले प्रसारण के अंत में क्षमा के अर्थ और मूल्य की चर्चा करते हुए कहा, जो लोग दिल में अच्छाई पोषित करते हैं वे पाते हैं कि ऐसी अच्छाई एक शांतिपूर्ण अंतःकरण और गहन आनंद की ओर ले जाती है, यहाँ तक कि कठिनाइयों और गलत फहमियों के बीच भी। अपमानित किए जाने पर भी अच्छाई अपने में कमजोर नहीं होती, बल्कि वह बदला नहीं लेते हुए अपनी शक्ति को दिखलाती है। हम सभी अपने में इस बात का अनुभव करें। बुराई की छोटी चिंगारी इसके पहले कि यह एक दहकती आग बने, हमें इसे बुझाने की आवश्यकता है। श्रोताओ, जब संघर्ष का समाधान नहीं होता बल्कि वे अपने में गुप्त या अतीत में दबे रहते हैं, तो हमारी शांति अपने में वृहद न समझियों और पापों की ओर हमें अग्रसर करते हुए स्थिति को और भी जटिल बना सकती है। सच्चा मेल मिलाप संघर्षों से भागना नहीं, वरन संघर्ष की स्थिति में उनका समाधान वार्ता के द्वारा खुले ईमानदारी और धैर्यपूर्ण समझौता से करना है। विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष यदि शत्रुता और आपसी घृणा से दूर रहता तो धीरे धीरे न्याय की चाह में मतभेद एक ईमानदारी पूर्ण वार्ता में बदल जाते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि बहुत से अवसरों पर मैंने समाज में मित्रता के निर्माण हेतु अनिवार्य सिद्धांत, विशेषकर एकता युद्ध से बढ़कर है, की चर्चा की है। यह एक तरह से समन्यवाद का विकल्प नहीं है या किसी का दूसरे के संग विलय ही, अपितु यह ऊंचे स्तर का एक संकल्प है जो दोनों पक्षों की उचित और उपयोगी बातों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। हम सभी जानते हैं कि जब हम व्यक्तिगत और सामुदायिक तौर पर अपने आप से और स्वयं की योजनाओं के परे जाते तो हमारी समझ और पारस्परिक निष्ठा फलदायक बनती है। ऐसी स्थिति में जहां संघर्ष, तनाव और यहां तक कि समूहें जो कभी विरोधी माने जाती थी, एक बहुआयामी एकता प्राप्त कर सकते हैं जो नए जीवन को जन्म देती है। जिन लोगों ने बहुत अधिक अन्याय और क्रूर कष्ट सहे हैं, उनसे सामाजिक क्षमा की मांग नहीं की जानी चाहिए। मेल मिलाप एक व्यक्तिगत कार्य है और हम इसे किसी समाज के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, यद्यपि इसे बढ़ावा देना उतना ही जरूरी है। सही अर्थ में व्यक्तिगत तरीके से कोई व्यक्ति स्वतंत्र और उदार निर्णय से सजा की मांग नहीं करने का विकल्प चुन सकता है, यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण से यह जायज और न्यायसंगत क्यों ना हो। फिर भी एक सामान्य मेल मिलाप की घोषणा करना अपने में संभव नहीं है, जहां हम घावों को, नियमों या अन्यायों को माफी की चादर से ढकने की कोशिश करते हैं। दूसरों के नाम पर कौन माफीनामा के अधिकार का दावा कर सकता है? यह अपने में कितना मार्मिक होता है, जहां हम उन लोगों को देखते जो अपने दुख और दर्द जिसका सामना उन्होंने किया है अपनी पीड़ाओं को पीछे छोड़ते हुए दूसरों को क्षमा करते हैं। हम उनकी परिस्थिति को भी समझ सकते हैं जो अपने कष्टों के कारण ऐसा करने में अपने को असक्षम पाते हैं। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, भूलना अपने में कभी एक जवाब नहीं हो सकता है। श्रोताओं, हम शोहा अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुए मानव इतिहास के सबसे क्रूरतम नरबलि होलोकॉस्ट को कभी नहीं भूल सकते हैं। यह उस गहराई का स्थायी प्रतीक है जिसमें मानवता बुराई में डूब सकती है, जब झूठे विचारों से प्रेरित होकर मानव स्वयं प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक गरिमा को पहचानने में विफल रहा है, जहां मानव शर्तहीन जातीय मूल या धार्मिक विश्वास का भेदभाव किए जाने के योग्य है। संत पापा कहते हैं कि इसके बारे में सोचते हुए मैं निस्सहाय केवल प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अपनी करुणा में हमें याद कर, हमें यह कृपा दे जिससे मानव के रूप में हम अपने घृणित कार्यों के लिए शर्म का अनुभव कर सकें, इस वृहद मूर्ति पूजा के लिए लज्जा का अनुभव करें। हमने अपने ही शरीर को जो मिट्टी से बना है घृणा करते हुए उसे नष्ट किया, जिसमें आपने अपनी सांसें डालते हुए जीवन दिया। हम और कभी ऐसा ना करें प्रभु, और कभी नहीं। श्रोताओं, ना ही हम हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने की घटना को भूल सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस इस क्रूर घटना के शिकार लोगों के प्रति पुनः अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं, मैं इसके शिकार सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन लोगों की शक्ति और सम्मान के आगे नतमस्तक होता हूँ जो उस घटना से बचकर अपने शरीर में घोर दुख और दर्द को वहन किया। उनकी जीवटता के आगे मृत्यु के बीज जो उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को समाप्त कर देती है। हम वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को जो हुआ है उसे भूलने नहीं दे सकते हैं। यह एक ऐसी स्मृति है जो निष्पक्ष और भ्रातृत्व में भविष्य के निर्माण की सुनिश्चितता प्रदान करते हुए इसे प्रोत्साहित करती है। हम विभिन्न देशों में हुए गुलामी, व्यापार, जनजातीय प्रताड़नाओं और हत्याओं को भी कभी नहीं भूल सकते हैं, जो अब भी कई देशों में निरंतर जारी हैं। साथ ही मानवीय इतिहास की उन सारी घटनाओं को जो हमें शर्मिंदगी से भर देती है, हमें उन्हें सदैव एक नए सिरे से याद करने की जरूरत है। हम उन घटनाओं के द्वारा कभी आदि या अभ्यस्त ना हों। श्रोताओं, वर्तमान में हमारे लिए पन्नों को पलटना और यह कहना आसान लगता है कि ये सारी चीजें तो सालों पहले हुई हैं, हमें भविष्य की ओर देखने की जरूरत है। संत पापा कहते हैं कि हम कभी ऐसा ना सोचें, हम अतीत की याद किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ईमानदारी पूर्वक यादों की याद किए हमारा विकास नहीं होता है। हमें अंतरात्मा की लौ को जीवित रखने की जरूरत है जो आने वाली पीढ़ियों को अतीत की भयावहता का साक्ष्य देगा, क्योंकि वह गवाह पीढ़ियों की स्मृति को जगाती और उसको बनाए रखती है ताकि मानवता का चेहरा प्रभुत्व और विनाश की हर सोच से परे जाए। व्यक्तिगत समुदायों या देशों के रूप में प्रभावितों को ऐसा करने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि वे उस मानसिकता के आगे झुक जाएं जो न्यायोचित प्रतिशोध की ओर ले जाती है, जहां हिंसा को हम न्यायसंगत घोषित करते हैं। यही कारण है संत पापा कहते हैं कि मैं न केवल उन अत्याचारों को याद करने की आवश्यकता के बारे में सोचता हूँ, बल्कि उन सभी को भी जिन्होंने इतनी बड़ी अमानवीयता और भ्रष्टाचार के बीच अपनी गरिमा को बनाए रखा और छोटे या बड़े रूपों में एकजुटता, क्षमा और बंधुत्व को चुना। अच्छाई को याद रखना भी एक स्वस्थ चीज है। श्रोताओं, हमने आज के प्रसारण में संत पापा के विश्व प्रेरित पत्र फ्रेतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। चाहता दूसरा बिगाल देना, एक मील कोई ले जाए जब संग दो मील साथ में जाना, एक गाल पे कोई मारेगा चाहता दूसरा बिगाल देना, एक मील कोई ले जाए जब संग दो मील साथ में जाना। माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी तुम माफ करना मसीहा सिखाते हैं, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस 12 से 15 सितंबर तक बुदापेस्ट और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा करेंगे। संत पापा अपनी यात्रा की शुरुआत बुदापेस्ट में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय यूकारिस्टीय कांग्रेस के समापन मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। उसके बाद वे स्लोवाकिया के लिए प्रस्थान करेंगे। संत पापा की प्रेरितिक यात्रा के कार्यक्रम इस प्रकार है। रविवार 12 सितम्बर को सुबह 6 बजे वे रोम के फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बुदापेस्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। 7:45 में वे बुदापेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगे और वहां उनका आधिकारिक स्वागत किया जाएगा। उसके बाद संत पापा बुदापेस्ट में ललित कला संग्रहालय में हंगरी गणतंत्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद उसी संग्रहालय में धर्माध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद हंगरी में कलीसियाओं की पारिस्थितिक परिषद और कुछ यहूदी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में संत पापा का संबोधन होगा। 11:30 बुदापेस्ट में हीरोज स्क्वायर में पवित्र मिसा समारोह होगा और वहीं संत पापा देवदूत प्रार्थना का पाठ करेंगे। 2:30 बुदापेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदाई समारोह होगा और 2:40 पर हवाई जहाज से संत पापा ब्रातिस्लावा के लिए प्रस्थान करेंगे। 3:30 ब्रातिस्लावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संत पापा का आगमन एवं ब्रातिस्लावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका आधिकारिक स्वागत किया जाएगा। 4:30 ब्रातिस्लावा के प्रेरितिक दूतावास में क्रिस्तीय एकता वर्धक बैठक को संत पापा संबोधित करेंगे और 5:30 ब्रातिस्लावा के प्रेरितिक दूतावास में येसु संघियों के साथ निजी बैठक करेंगे। 13 सितंबर को 9:15 ब्रातिस्लावा में राष्ट्रपति भवन में संत पापा का स्वागत समारोह होगा। वे गोल्डन हॉल में राष्ट्रपति से भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति भवन के बगीचे में अधिकारियों, नागर समाज और राजनयिक कोर के साथ बैठक में संत पापा का संबोधन होगा। 10:45 पर ब्रातिस्लावा के संत मार्टिन महागिरजाघर में धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म बंधुओं और प्रचारकों के साथ बैठक में संत पापा का संबोधन होगा। इसके बाद संत पापा बेतलहम केंद्र का निजी दौरा करेंगे। 6:00 ब्रातिस्लावा के प्रेरितिक दूतावास में संसद के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। मंगलवार 14 सितंबर को संत पापा हवाई जहाज से कोशीचे के लिए प्रस्थान करेंगे। 10:30 बजे प्रेसोव के मित्सित्का पोर्टोवा हाला प्रांगण में संत जॉन क्रिसोस्टम के बिजेंटीन धर्म विधि की अध्यक्षता और प्रवचन संत पापा द्वारा किया जाएगा। 4:00 बजे संत पापा रोमा समुदाय के साथ बैठक करेंगे और कोशीचे के लोकोमोटिव स्टेडियम में संत पापा युवा लोगों को संबोधित करेंगे। 15 सितंबर को 10:00 बजे संत पापा राष्ट्रीय तीर्थालय सास्टिन में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। उसके बाद 1:30 बजे ब्रातिस्लावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका विदाई समारोह होगा। संत पापा 3:30 बजे रोम के चंपिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचेंगे। संत पापा की प्रेरितिक यात्रा का प्रतीक चिन्ह है मरियम और जोसेफ के साथ येसु के रास्ते पर। एक दिल के अंदर नीचे एक सड़क को दर्शाया गया है जो क्रूस के रास्ते का प्रतीक है। संत जोसेफ के येसु और स्लोवाकिया की संरक्षिका कुंवारी मरियम के लिए प्यार की याद दिलाता है। लोगों में जड़े 7 सितारे उस नाम का संदर्भ है जो कुंवारी मरियम के लिए दी गई लोकप्रिय परंपरा की विशेषता है। 7 दुखों की हमारी माता। लोगों में स्लोवाकिया ध्वज के सफेद, नीले, लाल रंग और वाटिकन ध्वज के सफेद और पीले रंग को दर्शाया गया है। उधर वाटिकन राज्य सचिव के माध्यम से मंगलवार शाम को भेजे गए एक तार में संत पापा फ्रांसिस ने बगदाद में बमबारी में मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की और इराक में सुलह के लिए अपनी अपील को नवीनीकृत किया। संत पापा फ्रांसिस की ओर से वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने इराक के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष मित्सा लेवोस्कर को तार संदेश भेजा। संदेश में उन्होंने लिखा, संत पापा फ्रांसिस बगदाद के अल वहैलत बाजार में हुए विस्फोट में जान माल के नुकसान के बारे में जानकर बहुत दुखित हुए। वे मरने वालों के परिवारों और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। संत पापा मृतकों की आत्मा को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया तले समर्पित करते हैं। अपने संदेश के अंत में संत पापा अपनी उत्कट प्रार्थनाओं को दोहराते हैं। हिंसा का कोई भी कार्य उन लोगों के प्रयासों को कम नहीं करेगा जो इराक में सुलह और शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। इराक की राजधानी के उत्तरी सदर शहर इलाके के एक बाजार में मंगलवार को उस समय एक बम विस्फोट हुआ जब लोग ईद उल अजहा के त्योहार के लिए अपनी जरूरत की चीजें खरीद रहे थे। रिपोर्टों का अनुमान है कि विस्फोट से लगभग 30 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं। पिछले 6 महीनों में बगदाद में इस तरह का यह सबसे घातक हमला था। उधर म्यांमार में कैथोलिक धर्म प्रांत पीड़ित लोगों तक पहुंचना जारी रखा है। सैन्य तख्तापलट और विरोध के कारण लगातार बिगड़ते संकट के बीच कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर कहर बरपा रही है। सैन्य तख्तापलट के खिलाफ विरोध और हमलों के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवाएं व्यवहारिक रूप से न के बराबर होने के कारण म्यांमार की स्थिति गंभीर है। इस बीच सेना ने जातीय विद्रोही समूहों के साथ अपने संघर्ष को फिर से तेज कर दिया है जिससे विस्थापित लोगों की संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीजन की भारी कमी के बीच कोविड-19 महामारी की विनाशकारी तीसरी लहर के साथ संकट ने विकराल रूप ले लिया है। लोईकाओ धर्म प्रांत के प्रशासक फादर बाश्वे ने महामारी की तीसरी लहर पर गंभीर चिंता व्यक्त की जो जून के अंत से तेजी से फैल रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में भारी कमी लोगों को मुश्किलों में डाल रही है। उन्होंने कहा, पूरे काया राज्य में केवल एक ही मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।